गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राम के दिव्य चरित्र की चर्चा पिछले दो दिनों से चल रही है। वाल्मीकि रामायण के शुरुआत में ही बालकांड में ही नारद जी गुणावली का वर्णन करते हैं श्री राम का, और लगभग ऐसे 70 गुणों का उल्लेख करते हैं, और इनमें से कई गुणों की चर्चा हम कर चुके हैं। सब सारे गुणों की चर्चा तो नहीं हो पाई, परंतु सोमवत प्रिय दर्शन यहाँ चर्चा चल रही थी कि भगवान श्री राम का सौंदर्य भी चांद के समान है, बल्कि जैसे भगवान के साथ होता है यहाँ दुनिया के जो हम उपमाएं देते हैं उदाहरण देते हैं वो अच्छी तरह से भगवान का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि अंततः भगवान तो दिव्य हैं और ये संसार की वस्तुएं तो भौतिक हैं, तो भौतिक वस्तुओं के द्वारा किसी दिव्य वस्तु का वर्णन करना आसान नहीं है। फिर भी इसे किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई एक अंदाज मिले हमें कि भगवान का सौंदर्य कितना है। साथ साथ वाल्मीकि जी ये भी कह चुके थे, समुद्र इव गंभीर, ये कि श्री रामचंद्र का की गंभीरता ऐसी थी जैसे विशाल समुद्र की। बीच समुद्र में यदि आप गए हो किसी नौके में, जहाज में, जब समुद्र शांत है तो उस समय देखा होगा कि समुद्र की चौड़ाई कितनी है और गहराई का भी थोड़ा बहुत अनुमान लग सकता है। तो श्री रामचंद्र गंभीर थे समुद्र की तरह। धैर्येण हिमानीव, धैर्य में हिमालय पर्वत के समान थे। हिमालय पर्वत बहुत सहनशील है, धैर्य काफी धीरज का गुण दिखाई पड़ता है। श्री राम भी वैसे ही सहनशील थे। कालाग्नि सदृश क्रोध है, एक जगह बताया गया है कि वो जित क्रोध है, अपने क्रोध को जीत लिया है, और दूसरी ओर ऐसे बताया जाता है कि कालाग्नि अर्थात सारे सृष्टि के संहार के समय जो अग्नि होती है, जो बहुत भयानक होती है, उसके समान श्री राम का क्रोध है। खास करके जब उन्हें कोई युद्ध में ऐसे ललकारता है या कोई गलत काम करता है तो श्री राम का क्रोध उत्तेजित हो जाता है, परंतु भगवान का क्रोध बद्ध जीवों के क्रोध के समान बिल्कुल नहीं है। बद्ध जीवों का क्रोध रजोगुण और तमोगुण से संबंधित है, परंतु श्री राम भगवान होने के कारण उनके जितने भी गुण हैं वो सब दिव्य हैं। उनका क्रोध भी दिव्य है। उनके क्रोध का इस भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से कोई संबंध नहीं है। जब श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर विश्राम कर रहे थे और 3 दिन प्रतीक्षा की उन्होंने कि समुद्र देव हमारे सामने प्रकट होंगे और कुछ बताएंगे कि समुद्र पार करने का रास्ता क्या है, लंका पहुंचने के लिए श्री राम आतुर थे। जब 3 दिन के बाद भी समुद्र देव सामने प्रकट नहीं हुए तो राम आग बबूले हो गए, उनके आंखें लाल लाल हो गईं और अपना कोदंड बाण उठाकर तीर उसमें लगाकर वो समुद्र में छोड़ने ही वाले थे कि समुद्र देव वहां चले आए, सामने क्षमा याचना करने लगे। श्री राम के क्रोध को देखकर ही समुद्र का जल ऊंची ऊंची लहरों से युक्त हो गया। बड़े बड़े जो जलचर प्राणी थे वो भी घबरा गए। समुद्र देव ने जब क्षमा याचना की तो श्री राम ने कहा कि हमें समुद्र पार करने के लिए रास्ता क्यों नहीं दे रहे हो, हम 3 दिन से यहां राह देख रहे हैं। समुद्र देव वास्तव में कह रहे थे कि आप तो भगवान हैं, हमारी अनुमति की क्या आवश्यकता है, हम सब तो आपके सेवक हैं, परंतु आप ही ने तो ये सारे प्रकृति के नियम बनाए हैं। यदि जल पार करना है तो ऐसे ही कोई तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि प्रकृति के नियम भंग ना हो, परंतु मैं ऐसे आपकी सेवा कर सकता हूं कि आप मेरे जल के ऊपर पुल बनाइए, मेरी ताकत से मैं उन पत्थरों को रोक पाऊंगा। तो फिर श्री राम संतुष्ट हुए, परंतु तीर तो खींच के रखे थे, अब कहाँ छोड़नी है तीर। तो समुद्र देव से पूछा तो समुद्र ने कहा कि जब तीर खींची है छोड़ना तो है ही, तो उस प्रांत में छोड़ दीजिए जहाँ के असभ्य लोग रहते हैं और जो कि मेरे जल का स्पर्श करके मेरे जल को अशुद्ध करते हैं। और वहां पे श्री राम ने तीर जब छोड़ी तो वहां रसातल का जल भी ऊपर चले आया और श्री राम ने वहां कहा कि इस मरुभूमि में अच्छे वनस्पति आदि सब होंगे और गाय आदि गायों का संवर्धन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर होगा। तो ऐसे अंदाज लगाया जाता है कि राजस्थान की जो मरुभूमि है शायद इस प्रांत की चर्चा हो रही है, क्योंकि वहाँ इलाका ऐसे है, हरियाली ज़्यादा नहीं है, परंतु गोवंशों की संख्या वहाँ बहुत अधिक है। तो खैर, तो ये एक विरोधाभास लगता है कि एक जगह भगवान को जितक क्रोध है बताया गया है और दूसरी जगह कि उनके कालाग्नि सदृश क्रोध है, परंतु भगवान में सारे विरोधाभासों का समन्वय होता है क्योंकि वो परम सत्य हैं। और ये द्वंद्व जो है ये केवल बद्ध जीवों में दिखाई पड़ते हैं जो कि भौतिक गुणों के, प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। क्षमस्य पृथ्वी समः, क्षमा भी करते हैं या सहन भी करते हैं तो पृथ्वी की तरह है। पृथ्वी को कितना कुछ सहन करना पड़ता है, पृथ्वी का शोषण तो हर इंसान करता है, पृथ्वी परंतु शिकायत नहीं करती है, देती रहती है। आखिर वो माता है, जिस तरह से माता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं त्यागने के लिए तैयार होती हैं, कौन सा कष्ट सहन करने के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो पृथ्वी माता उनके ऊपर रहने वाले मनुष्यों के लिए, पशु प्राणियों के लिए क्या नहीं त्यागती हैं, बहुत सहन करती हैं। तो श्री राम पृथ्वी के समान क्षमस्व हैं। सत्य धर्म इवापरः, और सत्य बोलने में, सत्य वचनी होने में धर्मदेव के समान है, और उदारता में, दान में विशेष रूप से वो तो साक्षात कुबेर के समान है। ऐसे राम के गुणों का वर्णन नारद जी कर रहे थे। फिर हम अयोध्या कांड में जो श्री राम के गुणों का वर्णन है उसका उल्लेख कर रहे थे। सौंदर्य की चर्चा हुई, उनके शूरवीरता की चर्चा भी हो गई, और फिर नारद जी कहते हैं अनसूय कहा, इसकी चर्चा भी वाल्मीकि जी कर, नारद जी कर चुके हैं। अनसूय कह का अर्थ होता है कि ईर्ष्या उनके हृदय में नहीं है। ईर्ष्या का क्या मतलब है? ईर्ष्या का मतलब है कि दूसरे के हित को देखकर, दूसरे के सुख को देखकर, दूसरे के सफलता या यश या प्रसिद्धि को देखकर हमें दुख होता है। ऐसे कभी होता है? तो इसे ईर्ष्या कहते हैं, द्वेष कहते हैं। तो ईर्ष्याहीन व्यक्ति वो है, निर्मत्सर व्यक्ति वो है जो अन्यों के सुख को देखकर सुखी होता है। और वैष्णव इसके परे वो होता है जो अन्यों के दुख को देखकर दुखी होता है। पर दुख दुखी, ऐसे वैष्णव होते हैं। भगवान भी वैसे होते हैं। भगवान में कोई ईर्ष्या या भेदभाव नहीं होता है। वैसे तो महान वैष्णव भी ऐसे ही होते हैं। शुद्ध वैष्णव भी भगवान के ही के अंदर भी भगवान के गुण आ जाते हैं, भले वो लेश मात्रा में क्यों ना हो। निर्मत्सराणाम सताम, भागवत के बारे में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए है जो मात्सर्य से मुक्त हैं, जिनके हृदय में ये जलन नहीं है दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति। यहाँ राजमार्गों में चलते हुए बड़े बड़े ट्रकें चलती हैं, आपने तो देखा ही होगा, और उनके पीछे तरह तरह की चीजें लिखी हुई होती हैं, जैसे कि बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला इत्यादि, ऐसे सब लिखा होता है ना, आपने पढ़ा होगा, मेरा भारत महान। तो ऐसे एक बार हमने पढ़ा, बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी, जलना है तो दीपक की तरह जलो। कितनी सुंदर बात, हमने सोचा वाह ये बढ़िया बात कर दी इन्होंने। जलना अर्थात ईर्ष्या करना, जब दूसरों के यश या सफलता इत्यादि को देखकर हमारे हृदय में जलन होती है तो वो बहुत बुरी बात होती है, आदमी को सोने नहीं देती, नींद हराम कर देती है। जिसके बारे में जलन हो रही है हमें, वो तो चैन की नींद सो रहे होते हैं और हमें नींद नहीं आती बेचैनी के कारण, कि उनके पास ऐसे क्यों हुआ, ये इतना यश और ये सब प्रसिद्धि क्यों इन्हें मिली। तो यदि हमें जलना ही है तो एक दीपक की तरह जलना चाहिए। कैसे, इसका तात्पर्य क्या है, ये तात्पर्य हमने लगाया, वहां नहीं लिखा था, कि दीपक जब जलता है तो सब जगह प्रकाश का वितरण करता है, उजाला, अंधकार को नष्ट करता है। उसी तरह से हमें भी दुनिया में अज्ञान का विनाश करना चाहिए, अपने हृदय में और बाहर भी, कृष्ण भावनामृत के अभ्यास और प्रचार के द्वारा। साथ साथ दीप जो होता है वो धीरे धीरे जलता है, बहुत तेजी से यदि जल जाए तो फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उसी तरह से हम भी जब हमारी साधना वगैरह करते हैं तो ऐसे करना चाहिए कि पचन हो जाए, ऐसा नहीं कि बस हम कृष्ण भावनामृत में आए और बहुत अच्छा लगे, सोचे बहुत अच्छी बात है, दिन में 100 माला रोज करेंगे और रात को केवल 1 घंटा सोएंगे और देखे कि 1-2 महीने के बाद में माला ही छोड़ दिए हमने। तो धीरे धीरे जलें भले, लेकिन दीर्घ काल तक जलें, परंतु हृदय में दूसरों के प्रति जलन नहीं होनी चाहिए। तो श्री राम के चरित्र में ये देखा जाता है, बिल्कुल ईर्ष्या नाम के तनिक भी कोई गंध भी नहीं था उनके हृदय में। और फिर बहुत सुंदर बात बताते हैं वाल्मीकि जी, मृदो पूर्वम च भाषते। मृदु पूर्वम च भाषते का मतलब है कि उनकी बोली बहुत निम्न स्वर में होती थी, कभी ऊंचे आवाज में नहीं बोलते थे, मृदु, कोमल, उनकी भाषा, उनकी बोली कोमल हुआ करती थी। हम देखते हैं कि भारत में यह एक समस्या है, मृदु बोलने वाले लोगों की बड़ी कमी है। जहां भी आप जाएं, सड़कों में जाएं, बसों में, ट्रेनों में, किसी भी स्थान में, घरों में भी जाएं, तो ऊंची आवाज में ही लोग बात करते हैं। हमने कई बार देखा है भक्तों के समाज में, कभी बोलते लोग आके सामने बैठते इतनी जोर से बात करते हैं, कहते भाई सुन सकते हैं हम, तो जितनी सुनने के लिए आवश्यकता है उतने ही जोर से बोला कीजिए, इससे अधिक जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसे कई बार लोग बात करते हैं, ऐसे कौम हैं कई, जैसे इनके बारे में मजाक किया जाता है कि जब ये लोग बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, प्रेम से ही बात कर रहे होंगे, लेकिन ऊंची आवाज में बात करते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। रेलगाड़ियों में सफर कीजिए, आप सोना चाहते हैं लेकिन जोर जोर से बगल में कोई बात कर रहे हैं, सोचते नहीं कि हमारे बोलने से इनकी नींद खराब हो रही है, सो नहीं पा रहे हैं, दूसरे के बारे में विचार नहीं करते लोग। तो उच्च स्वरों में बोलना ये सभ्यता के लक्षण नहीं है। आजकल ये पुण्य भूमि है, लेकिन सारी सभ्यता को हम भूल चुके हैं और इतने कटु वचन और इतने कठोर वचन सभी बोलते हैं ऊंचे आवाज में सब जगह, वृंदावन धाम हो या जहां भी हो, तो अच्छा नहीं लगता। परंतु श्री राम की बोली कैसी थी? मृदु पूर्वम च भाषते, मृदु भाषी थे वो। अंग्रेजी में कहते हैं सॉफ्ट स्पोकन, अर्थात ऊंची ऊंचे स्वरों में नहीं बोला करते थे। फिर आगे वाल्मीकि जी कहते हैं गुणे ही दशरथोपमः, गुणों में दशरथ महाराज उनके पिता के समान थे। दशरथ महाराज भी सर्वगुण संपन्न थे और श्री राम भी वैसे ही थे, बिल्कुल अपने पिता के समान थे। भूमाव अनुपमः सूनुहु, भूमाव अर्थात भूमि के ऊपर, अनुपमः सूनुहु, सूनु अर्थात पुत्र, सारे पृथ्वी में राम जैसा कोई पुत्र नहीं था। अनुपम शब्द का अर्थ है कि जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, जिनके समान कोई ऐसा नहीं है। तो राम जैसा पुत्र कहीं पृथ्वी लोक में नहीं पाया जाता है। सच नित्य प्रशांत आत्मा, सदैव मन में वो शांत रहा करते थे। साथ साथ हम अभी अभी सुन चुके हैं कि कभी श्री राम ऊंचे स्वरों में नहीं बोलते थे। अब सामने वाला ऊंचे स्वरों से बोले तो क्या? कभी हम कहें भाई हम तो ऊंचे स्वरों में नहीं बोलते, लेकिन सामने वाला आके हमें भड़का देता है, ऊंचे स्वरों में बात करता है, तो फिर हम भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन राम के बारे में वाल्मीकि जी कहते हैं उच्च मानोपि पुरुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते, कि सामने वाला भी यदि ऊंचे स्वर में बोलते तो उल्टा जवाब कठोरता से ऊंचे स्वर में श्री राम नहीं देते। नोत्तरम प्रतिपद्यते, न उत्तरम, बड़े नम्रता से सुन लेते, स्वीकार कर लेते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए जब कोई हमारे साथ अच्छे तरह से बोल रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, तो हम भी उनसे प्रेम से बात करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, हर व्यक्ति कर सकता है ऐसे। हमारी परीक्षा तब होती है जब कोई ऐसे हमसे बात कर लेता है जो कि बहुत कटु है, और फिर हम उस व्यक्ति के साथ अच्छी तरह से ही बात करते हैं। तो ऐसे श्री राम थे। साथ साथ उनके बारे में बताया जाता है कथंचित उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति, कथंचित किसी न किसी तरह से, उपकारेण किसी ने उनके प्रति यदि उपकार किया या उनके प्रति कोई भला कार्य किया, उनके हित के लिए कोई कार्य किया, कृतेनैकेन तुष्यति, एक भी ऐसे कोई कार्य किया तुष्यति, वो बड़े संतुष्ट हो जाते थे। परसों हम इस बात की चर्चा कर रहे थे ना कि ऐसे एक चीज को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे प्रति जब कोई अच्छा काम करता है, हमारे हित के लिए कोई कार्य करता है, तो उस कार्य को और उस व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए हमें। तो श्री राम के चरित्र में ऐसे गुण थे, एक भी कोई अच्छा काम उनके प्रति करता तो वो भूलते नहीं, और यदि कोई उनके प्रति बुरा काम करता तो वाल्मीकि जी कहते हैं न स्मर्तव्य पकाराणाम शतम अप्यात्मवत्तय, वो कहते हैं कि यदि कोई 100 गालियां भी उनको सुनाता या 100 बुरे कर्म भी उनके प्रति करता, फिर भी न स्मरत्य पकारणम, उसको याद नहीं रखते थे, भूल जाते थे। अब ये बहुत मुश्किल है, एक बार हम से किसी ने गलत व्यवहार किया तो कितने समय तक हम याद रखते हैं, बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन ये बात तो याद रह जाती है। और किसी ने हमारे प्रति ऐसे 100 बार गलत व्यवहार किया तो सपने में भी भूलते नहीं, सपने में भी याद करते रहते हैं उस व्यक्ति को। परंतु श्री राम इतने उदार थे, किसी ने उनके प्रति बुरा भी किया हो तो कभी भी बुरा नहीं मानते थे, उसको याद भी नहीं रखते थे कि इस व्यक्ति ने ऐसे हमारे प्रति किया है। इसलिए उनके मन में बदला लेने की भावना बिल्कुल नहीं होती थी। ये रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होता है ये सब। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों को बुरा समझते हैं, खास करके जो उन्होंने हमारे प्रति कोई गलत किया हो, तो हमारे मन में बद्ध अवस्था में विचार आता है कि हमें बदला लेना चाहिए। कम से कम थोड़े सभ्य हों तो हम सोचेंगे ठीक है मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं और से भले हो जाए उसका बुरा ताकि हमारी गलती उसमें ना हो जाए, परंतु हो जाए उसका बुरा कहीं ना कहीं से, दैव से हो जाए, कहीं से हो जाए, और दूसरा कोई व्यक्ति उसे दुश्मनी कर बैठे तो प्रसन्न हो जाते हैं, भलो भाई चलो भाई लड़ो आपस में। परंतु श्री राम के चरित्र से देखिए, ऐसे किसी के प्रति बुरे विचार रखते ही नहीं थे तो फिर बदला लेने की बात कहां आती उनके मन में। जब हमारे प्रति कोई बुरा करता है तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि उसका बुरा होना चाहिए, हमेशा सबका भला होना चाहिए, ऐसे विचार हमें करना चाहिए। भले वो व्यक्ति हमें अपना शत्रु मान क्यों न रहा हो, फिर भी उसका भला चाहना चाहिए। ये होते हैं सभ्य व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को संत कहते हैं। जब श्री रामचंद्र ने लंका में जाकर रावण का वध कर दिया, वानर सेना ने लंका में तहस नहस मचा दिया, रावण की सेना का विध्वंस हो गया, तो उस समय श्री राम ने विभीषण को राज सिंहासन पर बिठाया, लंका का राजा घोषित किया, राज्य अभिषेक हुआ, और फिर श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि जाओ सीता देवी को यह सुसंदेश दे दो कि अब जीत हमारी हुई है, जिस उद्देश्य से हम यहां आए थे वो पूर्ण हो चुका है, रावण का वध हो गया है, अब शीघ्र ही मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूं। इसके पहले विभीषण जो अब यहां लंका के राजा बने हैं वो आपके चरणों में सम्मान अर्पण करने के लिए आएंगे। तो हनुमान जी ने तो ऐसे कह दिया, सीता देवी बैठी बैठी अवाक हो गई, एक शब्द उनके मुख से निकला नहीं। हनुमान जी ने पूछा कि क्या बात है, आपके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो सीता देवी ने कहा क्या करें, कभी कभी जब बहुत दुख होता है तो शब्द नहीं निकलते हैं, परंतु कभी कभी बहुत सुख होता है तब भी नहीं निकलते हैं। तो अब इतना सुख मुझे मिल रहा है कि अब श्री राम यहाँ आने वाले हैं मुझे लेने के लिए, मेरे मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। सीता देवी ने हनुमान जी के व्यवहार और उनकी बोली और उनकी भाषा की बहुत प्रशंसा की। हनुमान जी इतने सुसंस्कृत थे और श्री राम और लक्ष्मण भी पहली बार जब ऋषिमुख पर्वत के सामने हनुमान जी से मिले थे तो राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, ये जो व्यक्ति हैं इनकी बोली कितनी मीठी है, कितनी मधुर है, और शब्दों का चयन इन्होंने इस तरह से किया है, बिल्कुल सही शब्द उच्चारण बिल्कुल सही, और जिस तरह से शब्दों को उन्होंने जोड़ा है और वाक्यों को बनाया है, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से उनके चेहरे के ऊपर जो हल्की मुस्कान है बात करते समय इत्यादि, اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بہت بڑے ودوان ہیں، واک پٹو ہیں۔ تو ہنومان جی ایسے تھے، آخر سوریہ دیو کے ششیہ تھے، سوریہ دیو سے اپنے بچپن میں شکشا پراپت کی تھی انہوں نے ویدوں میں۔ تو سیتا دیوی نے بھی اسی طرح کی پرشنسا کی ہنومان جی کی۔ ہنومان جی سنتے رہے لیکن پھر کہنے لگے کہ ہے ماتے، ہم انومتی چاہتے ہیں آپ سے۔ کیا انومتی چاہتے ہو ہنومان؟ یہ جو راکشسیاں یہاں پر ہیں اشوک واٹیکا میں، جب میں پچھلی بار آیا تھا، انگوٹھی آپ نے دی تھی مجھے، میں چھپ کر جب سب دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ ساری راکشسیاں اتنا آپ کو کشٹ دے رہی تھیں، بہت کٹھور وچن بول رہی تھیں آپ کے پرتی، اور ان کا ویوہار آپ کے پرتی بہت برا تھا، بہت انیائے آپ کے پرتی انہوں نے کیا۔ اس لیے بس آپ انومتی دیجئے اور میں ان کو ختم کر دوں گا، ان کے اوپر مکہ پرہار کروں گا، لات ماروں گا، ان کے کان آدھی پھاڑ لوں گا مکھ سے، کیونکہ ان کو یہ ساہس ہوئی تھی کہ آپ کا اپمان انہوں نے کیا۔ تو ہنومان جی کافی کروت میں تھے تو بول رہے تھے کہ ان سارے راکشسیوں کا ود میں کر دوں گا بھی۔ تو سیتا دیوی سن رہی تھی، تو تھوڑے سمے کے لیے تک انہوں نے سن لیا اور پھر تھوڑے سمے کے لیے شانت رہی۔ پھر کہنے لگی ہنومان، میں کہانی آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ایک بار ایک ون میں ایک شکاری تھا اور کہیں ون میں کھو گیا وہ، اور اس کا پیچھا ایک شیر کرنے لگا۔ شیر سے بچنے کے لیے یہ ویکتی بھاگتا گیا، لیکن جب شیر پیچھا کر رہا ہے تو شیر کی بھاگنے کی جو گتی ہے وہ منوش کی گتی سے تیزی ہے، تو شکاری نے سوچا کہ بھاگتا رہوں گا تو میں بچ نہیں پاؤں گا شیر سے۔ تو پاس میں ایک پیڑ دیکھا اور ترنت پیڑ کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں اوپر سرکشت رہ گیا، اور یہ شیر آ کے نیچے اوپر دیکھ رہا تھا، ہتاش ہو گیا کہ ارے ابھی ابھی مجھے بھوجن ملنے والا تھا، اب یہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اور پھر شیر نے دیکھا کہ اوپر ایک بھالو بھی بیٹھا ہے۔ اب یہ شکاری بیچارہ اور گھبرا گیا، اوپر یہاں بھالو اور نیچے شیر، تو کانپتا بیچارہ وہاں بیٹھ رہا تھا کہ شیر نے بھالو سے کہا، ارے دیکھو بھالو، ہم دونوں متر ہیں، بھائی ہیں، ہم ون کے رہنے والے ہیں، جنگل کے نواسی ہیں، اور یہ جو منوشیہ ہے نا، یہ ہمارے شترو ہیں، یہ ہمیشہ ہمارے اہت کے لیے کاریہ کرتے ہیں، تو چلو ہماری دوستی بڑھنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی سہایتا کرنی چاہیے۔ اب میں بھوکھا ہوں تو ایسا کرنا، یہ شکاری اب یہاں اوپر چڑھ بیٹھا ہے، اس کو دھکا مار دو تاکہ وہ نیچے گر جائے اور میں اس کو کھا جاؤں، اور پھر ہماری دونوں کی دوستی ہو جائے گی، اور آگے چل کے جنگل میں تمہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا کہ میں تمہاری رکشا کروں گا۔ تو بھالو کہنے لگا کہ دیکھو بھائی شیر، بات یہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ پیڑ، اب یہ شکاری بیچارہ ڈر کے مارے، اپنے جان کے ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے یہاں آیا اور میرے گھر میں آ کے بیٹھ گیا ہے، ڈرا ہوا ہے یہ آدمی، اب میرے گھر میں آیا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ وہ میرا آشرے لے رہا ہے۔ ایک آشرت ویکتی کے پرتی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، میں کیسے اسے نیچے دھکا مار دوں، یہ سمبھو نہیں ہے، تو میں نہیں کروں گا۔ تو شیر سوچنے لگا بھائی بھالو سوچو ذرا، تب بھالو اپنے باتوں میں اٹل رہا. پھر شیر سوچتا رہ گیا، پھر شیر اب شکاری کو کہنے لگا، دیکھو بھائی شکاری، جب بھالو سو گیا، بھالو تو تھک گیا تھا، بھالو جب سو گیا اور یہ بیچارہ شکاری تو سو نہیں پا رہا تھا، نیچے شیر ہے، تو شیر شکاری سے کہنے لگا، دیکھو ایسے کرو بھالو کو دھکا مار دو تاکہ بھالو نیچے گر جائے گا، پھر میں بھالو کو کھا جاؤں گا اور ہم دونوں دوست بن جائیں گے، اور میں تمہیں نشچت روپ سے بتاتا ہوں کہ ہم دونوں متر رہیں گے، میں تمہاری رکشا کروں گا اور ون کے باہر جانے تک میں تمہارے ساتھ میں رہوں گا، کوئی ہانی نہیں پہنچے گی تم کو. تو شکاری نے کیا کیا، انسان ہے نا، انسان اچھا ہوتا ہے یا پشو اچھا ہوتا ہے، جانور اچھا ہوتا ہے نا، تو ہچکچایا نہیں شکاری، شکاری نے بیچارے سوتے ہوئے بھالو کو دھکا مار دیا. اب بھالو گر رہا تھا اوپر سے، جاگ گیا اچانک، لیکن گرتے گرتے اس کے ہوش آ گئے، نیند کھل گئی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک ڈالی کو، ایک شاخہ کو پکڑ لیا اور اپنے آپ کو گرنے سے بچا لیا. تو زمین پہ نہیں گرا، ایک شاخہ کے اوپر ہی رہا اور پھر چڑھ کے پھر سے اوپر چلے گیا. اب شیر دوبارہ بھالو سے کہنے لگا، دیکھا کیسے وشواس گھات کیا ہے، ایسے ہوتے ہیں یہ منشیہ، اس لیے منشیوں کے پرتی وشواس نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو شرن کیوں دینا چاہیے، آخر ہم دونوں جانور ہیں، تو اب تو کم سے کم دھکا مارو اسے. تو اس سمے اس بھالو نے ایک بات کہی، سیتا دیوی کہتی ہیں، ن پرہ پاپم آدتے پریشم پاپ کرمنام سمیو رکشتیستو سنتس چرتر بھوشناہ. تو کہنے لگے کہ دیکھو جب کوئی شریشٹھ ویکتی ہوتا ہے، ن پرہ پاپ مادتے پریشان پاپ کرمنا، یدی اس کے پرتی کوئی دوسرا ویکتی برا کام کرتا ہے، اپرادھ کرتا ہے، ہانی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو جو سادھو ہے اس بات کو گمبھیرتا سے نہیں لیتا، اسے اپرادھ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ وہ بدلہ لینے کی بھاونا اس کے من میں آتی ہی نہیں ہے. سنتش چرتر بھوشنا ہے، تو سنتوں کے لکشن یا گن ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے وہ گنوں کے دوارا وہ سوشوبھت ہوتے ہیں، النکرت ہوتے ہیں، بلکہ یہ جو سچی آبھوشن جو ہیں یہ سنت کے جیون میں، وہ ان کے گن ہوتے ہیں. لوگ اپنے آپ کو بہت سندر بنانے کے لیے طرح طرح کے وستر آبھوشن آدھی پہنتے ہیں، گرہن کرتے ہیں، پرنتو سچے جو آبھوشن ہمارے لیے ہیں وہ ہیں ہمارے گن، ہمارے لکشن. سنتس چارتر بھوشنا، تو سنتوں کا چرتر، سنتوں کے گن ہی ان کے آبھوشن ہوتے ہیں. تو سنت گن جو ہیں ایسے گنوں سے یکت ہوتے ہیں، سوشوبھت ہوتے ہیں، کبھی بھی کسی کے پرتی برا نہیں سوچتے ہیں. یدی کسی ویکتی نے ان کے پرتی برا کار کیا ہو، لیکن سنت کبھی اس کے پرتی برا کرنے کے لیے نہیں وچار کرے گا. تو سیتا دیوی کہنے لگی، اس لیے ہنومان جو سجن ہوتے ہیں ان لوگوں کے پرتی بھی برا نہیں سوچتے ہیں، جو سب ہمارے اوپر جو برا کرتے ہیں. اس لیے یہ جو راکشسیاں ہیں بیچارے معصوم ہیں، یہ وہ کیا کرتی، وہ تو داسیاں تھیں راون کی، یدی وہ راون کے آدیش کا پالن نہیں کرتی تو راون ان کو مار ڈالتا، اس لیے دوش ان کا نہیں ہے. تو ان کی پرتی میرے ہردے میں کوئی دویش نہیں ہے، نہ میں کوئی بدلہ لینا چاہتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ میرے کرموں کا پھل ہی مجھے ملا ہے، میرے پرارتھ میں ایسے تھا، ایسے ہونا تھا اور ہوا۔ تو ہنومان جی کا ہردے پریم سے بھر آیا، ایسی باتیں سن کر آشچری چکت ہو گئے، بڑے پرسن ہوئے۔ اس طرح سے سیتا دیوی نے ہمیں بہت مہتوپورن لکشن دیے ہیں، بہت مہتوپورن اپدیش دیے ہیں دینک جیون میں ہمارا ویوہار کیسے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے تو ادھک سے ادھک جو سمسیائیں ہم دن میں دینک جیون میں دیکھتے ہیں وہ کیول منشیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، سمبندھوں میں، اس ویکتی نے ایسے کہہ دیا، اس ویکتی نے ایسے کیا، اس لیے ہمیں کشٹ ہوا۔ اور جب ہم کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں دوسروں کو کشٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے بیچ میں دویش ویر اتیادی اتپن ہوتا ہے، سمبندھ بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے صحیح برتاؤ سیکھنا یہ بہت آوشک ہے۔ ویشنو سماج میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ حالانکہ بھکتی مارگ اتنا شدھ ہے، پوتر ہے، شریشٹھ ہے، پھر بھی بھکتی کرتے کرتے ایسے بھی ہوتا ہے کہ شاید سادھنا کبھی کبھی اتنی مضبوط یا شکتیشالی نہ ہو، لیکن جو پرانا سوبھاو ہے بھکتی میں آنے کے پہلے جو ہوتا ہے وہ آسانی سے جاتا نہیں ہے، اور اس لیے پرانے سوبھاو کے اوپر ابھرنے سے ہمارے ویوہار کبھی ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ اچت نہیں ہے۔ اس لیے شاستروں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے، بھگوان کون ہے، بھگوان کے لکشن، بھگوان بھکتی کیا چیز ہے، بھکتی کے لکشن کیسے ہیں اتیادی، یہ سب تو سیکھنا ہی چاہیے۔ ساتھ ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے سماج میں، بھکتوں کے سماج میں کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، دنیا کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں بہت مہتوپورن ہے سیکھنا۔ یہ سب بدلہ لینے کی بھاونا، یا یہ ہمارے پرتی کوئی برائی کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے پرتی کوئی برا کریں گے، ایسی بھاونائیں یہ ویشنوتا سے بالکل ورودھ ہوتی ہیں۔ ہماری ویشنوتا، ہماری بھکتی نشٹ ہو جائے گی ایسے ویر بھاونا سے، ایسے ایرشا کی بھاونا سے۔ ویشنو نرمتسر ہوتے ہیں، بلکہ ہری داس ٹھاکر کی طرح بھلے ہم نقل نہیں کر پائے ان کا، لیکن ان کے پد چنہوں میں چلنے کا پریاس تو کرنا چاہیے۔ یدی ہمارے پرتی کل کوئی کہے یا کچھ کرے جو ہمیں اچھا نہیں لگا، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا برا ہم کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے بھی آوشکتا نہیں کہ اداس ہو کر 10 دن ہم بیٹھ گئے مالا نہیں کیے کہ کیوں اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، نہیں، کیوں نہ اس بار سے ہم ایسے پریاس کریں کہ جب بھی کوئی ہمارے پرتی کچھ کہتا ہے یا کرتا ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگا، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شاید ہمارے پورو کرم، کرت کرم تھے، ان کے پھل ہمیں مل گئے، ہم نے بھی کسی کے پرتی ایسے برا ویوہار کبھی کیا ہوگا، اس کا پرینام ہمیں مل رہا ہے، اور ان کے بھلائی کے لیے ہمیں بھگوان سے پرارتھنا کرنی چاہیے۔ ہمارے پرتی جو اچھا ویوہار نہیں کرتا ہے اس کے بھلائی کے لیے پرارتھنا کرنا ہے ہمیں، اس بات کا ابھیاس ہم کر سکتے ہیں، بہت مشکل ہے، لیکن ایسے پریاس کرنے سے بھگوان پرسن ہوں گے۔ تو شری رام آدرش ویکتی ہیں، وہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، جینا کیسے چاہیے۔ پھر آگے والمیکی جی ورنن کرتے ہیں کہ شری رام چندر پرجلپ نہیں کیا کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، اور باتیں کرتے تھے تو کیول 3 پرکار کے ورشٹھ لوگوں سے بات کرتے تھے۔ ورشٹھ ویکتی کون ہوتا ہے، کیا کس آدھار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویکتی ورشٹھ ہے، तो वाल्मीकि जी कहते हैं शील वृद्धि ही, शील अर्थात जो नैतिकता में व्यवहार में हमसे आगे बढ़े हुए हैं, तो हमें उनसे उन्हें हमसे वरिष्ठ मानना चाहिए। जो हमसे ज्यादा सुसंस्कृत हैं, नीतिवान हैं, तो ऐसे लोगों को वरिष्ठ मानना चाहिए। दूसरा है ज्ञान वृद्धि ही, जिनके पास हमसे अधिक ज्ञान है उनको हमसे वृद्ध मानना चाहिए या हमसे वरिष्ठ मानना चाहिए। और फिर वयोवृद्धैश्च, आयु में उम्र में जो हमसे बड़े हैं उन्हें भी हमें वरिष्ठ मानना चाहिए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं सज्जन ही कि ये इस तीन प्रकार के जो सज्जन हैं, जो शील वृद्धि, ज्ञान वृद्धि, वयोवृद्धि हैं, उनके प्रति वो संवाद किया करते थे, बातचीत किया करते थे, दुर्जनों के पास नहीं जाते थे बातचीत करने के लिए। तो हमें भी हमारे भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है तो केवल ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जिनके संग से हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। जो हमसे आगे भक्ति में बढ़ चुके हैं, जिनका व्यवहार हमसे अच्छा है, जो शालीन हैं, सुशील हैं, सुसंस्कृत हैं, ज्ञान में, भक्ति में, साधन में, भजन में हमसे बड़े हैं, वैसे तो वैष्णव को सभी का सम्मान करना चाहिए, परंतु विशेष रूप से इन गुणों से जो युक्त हैं उनका अधिक सम्मान करना चाहिए। और एक बात है, जो आयु में हमसे बड़े हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। ये सब चीजें आजकल समाज में नहीं देखी जाती हैं। भारत में भी ये सारी प्रथा आज धीरे धीरे से लुप्त होती जा रही है। तो श्री राम अच्छी तरह से जानते थे कि बुजुर्गों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। फिर आगे वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि श्री राम थे मधुराभाषी। मधुराभाषी का मतलब है कि उनकी भाषा बहुत मीठी हुआ करती थी, न केवल मृदुभाषी, मधुराभाषी। मृदुभाषी मतलब हल्के स्वर में बोलते थे, और जब बोलते थे तो उनकी वाणी बड़ी मधुर हुआ करती थी, अमृत के समान। सुनने वाले का हृदय प्रसन्न हो जाता था उनकी बोली सुनकर, इस तरह से बात करते थे। साथ साथ पूर्वभाषी, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। पूर्वभाषी का क्या मतलब है कि जो पहले बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से मिलते हैं तो हम बोलते रहें, बेचारे सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दें, ऐसा नहीं। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि अहंकार की वजह से दोनों व्यक्ति सोचते हैं मैं पहले जाके क्यों बात करूं उनसे, उन्हें आना चाहिए मेरे पास हरे कृष्ण उनको पहले कहना चाहिए, फिर मैं जाके हरे कृष्ण कहूंगा, मैं भी अच्छी तरह से व्यवहार करूंगा उनसे, लेकिन पहले उनको बात करना चाहिए मेरे से। ऐसे कभी मन में विचार आया है? होता है कभी कभी, हम क्यों पहले बात करें उनसे, यदि वो बात करेंगे तो हम अच्छी तरह से बात करेंगे, हमें कोई समस्या नहीं उनके साथ, लेकिन उन्हें हमारे पास आना चाहिए। परंतु श्री राम ऐसे नहीं थे, पूर्वभाषी। भले सामने वाला आदमी योग्य हो, अयोग्य हो, वरिष्ठ हो, निकृष्ट हो, जो भी हो, वो उनके पास जाते और अपने मृदुभाषी, मथुराभाषी होकर फिर वो उनसे बात करते, सब ठीक ठाक है ना, कैसे है सब कुछ, जाके मीठे शब्दों में बात कर लेते। इसलिए बड़े लोकप्रिय थे, उनके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं था, वो कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, राजकुमार थे, स्वयं भगवान है। फिर भी कभी ऐसे अहंकार पर स्थित होकर वो बर्ताव नहीं किया करते थे, सामने से जाके बात किया करते थे। तो हमें भी याद रखना है, हम किसी भक्त से मिलते हैं बहुत समय के बाद, हमें प्रसन्न होना चाहिए। ये एक विषय अलग है, वैष्णव अपराध क्या चीज होते हैं, तरह तरह के वैष्णव अपराध होते हैं, इस विषय की चर्चा गहराई में तो नहीं करेंगे इस समय, परंतु इतना कहना इस समय उचित होगा कि जब हम किसी वैष्णव को देखते हैं और देखकर जब प्रसन्न नहीं होते हैं तो यह भी एक तरह का वैष्णव अपराध है। जब किसी वैष्णव को देखकर प्रसन्नता होती है कि अरे देखो कृष्ण भक्त आ गए, कृष्णदास या कृष्णदासी आ गई है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं क्योंकि हम उनके वैष्णवों को, उनके भक्तों को देखकर हम प्रसन्न हुए हैं। और हम किसी को देखकर प्रसन्न होते हैं तो जाके बात करते हैं ना उनसे, प्रभु जी कब आए आप वृंदावन, कैसे हैं, सब ठीक है, साधना कैसे चल रही है आपकी, पूर्वभाषी। तो देखिए इस दैनिक व्यवहार में के लिए भी कितना कुछ हम सीख सकते हैं हमारे शास्त्रों से। फिर वाल्मीकि जी कहते हैं प्रियम वदह, प्रियम वदह मतलब उनकी बोली करुणामयी होती थी, उनकी बोली में करुणा होती थी और दूसरों के प्रति करुणा दिखाकर बात करते थे। इस तरह बात नहीं करते थे जिससे कि अन्यों के दिल में दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे। प्रियम वदह, वैसे ये अपने आप में ये एक विशेष एक विषय ही है, भाषा, भाषा की संस्कृति, बहुत बड़ा विषय है ये। कभी हो सके तो इसके ऊपर चर्चा कर सकें करें हम, परंतु अब देखिए वाल्मीकि जी ने कई बातें बताई हैं, मृदुभाषी, मथुराभाषी, पूर्वभाषी, प्रियम वदह। हमारी बोली में भी, हमारे बर्ताव में भी हम याद रखने चाहिए कि श्री राम कैसे थे, तो हमें भी उन्हें उनके पद चिन्हों में चलने का प्रयास करना चाहिए। वीर्यवान नच वीर्येण महता स्वेन विस्मितः, वो वीर्यवान तो हैं परंतु अपनी शक्ति का तनिक भी उनको घमंड नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, शक्ति या बल ये भी एक ऐश्वर्य होता है, और जब किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य किसी व्यक्ति के पास आ जाता है भगवान की कृपा से, तो देखा जाता है दुनिया में कि उसके हृदय में घमंड आ ही जाता है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे ऐश्वर्य सभी में नहीं होते, और हमारे अंदर कोई ऐसी चीजें होती हैं जो अन्यों में नहीं है तो अन्य लोग प्रशंसा करने लगते हैं, हमें बहुत मानने लगते हैं, हमसे डरते भी हैं शायद, यदि बहुत शक्तिशाली हम हैं तो फिर हमें घमंड होने लगता है कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूं। परंतु श्री राम कभी भी अपने शक्ति के प्रति आपके कारण घमंडी नहीं हुआ करते थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन घमंडी होते हैं, जिनके अल्प ऐश्वर्य हैं और अल्प ज्ञान है, और घमंड आने के लिए वैसे ज्यादा कोई ऐश्वर्य होने की भी जरूरत नहीं है, इतना भी कुछ हमारे पास हो उसके प्रति भी हमारे हृदय में घमंड होने की पूरी संभावना होती है। फिर आगे वाल्मीकि जी बताते हैं न चांद्रित कथो, कभी झूठ नहीं बोलते थे, रित मतलब सत्य, श्री राम सदैव सत्य ही बोलते थे। वृद्धानाम प्रतिपूजक, वृद्धों के प्रति उनका व्यवहार बड़ा सम्मान पूर्वक रहता था, बड़े आदर से बर्ताव करते थे वृद्धों के प्रति। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है, लोग अपने माता पिता का भी ख्याल ठीक से नहीं रखते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, भक्त समाज में भी ये आवश्यक है, जो हमसे बड़े हैं आयु में उनकी सेवा हम करें, सम्मान से उनके साथ बर्ताव करें। भले कोई ब्रह्मचारी भी हों लेकिन हमसे आयु में बढ़े हों, अब आयु उनकी बढ़ती जा रही है तो सम्मान देना चाहिए उनको, उनके प्रति उनका ख्याल रखना चाहिए। ये सभ्य समाज है, सभ्य जीवन है। ऐसे ही जीवन, ऐसे समाज में सभी लोग संतुष्ट रहते हैं। जब व्यक्ति के अंदर सही गुण आ जाएंगे तो सारा समाज सुखी हो जाएगा। समाज में अशांति का कारण यह है कि जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों में दुर्गुण भरे हुए हैं, इसलिए समाज में अशांति और असंतुलन फैल जाता है। तो इसलिए श्री राम के गुण हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। अनुरक्त प्रजाभिश्च, प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, प्रजा अनुरक्त थी उनके प्रति, क्योंकि ऐसे गुणों से युक्त थे। आजकल प्रजा से कौन प्रेम करता है, अरे राजा से कौन प्रेम करता है, कोई नहीं करता। और जिस तरह से लोग अपने नेताओं के बारे में बात करते हैं, अधिकारी व्यक्तियों के प्रति बात करते हैं, ये कलयुग के लक्षण हैं। और वो भी प्रजा से प्रेम करते थे। राजा को चाहिए कि वो प्रजा का देखभाल इस तरह से करे जैसे पालक अपने बच्चों का देखभाल करे। तो का नाम पितरो बंधु, ऐसे भागवत में श्लोक है कि जैसे माता पिता बच्चों का देखभाल करते हैं, राजा को प्रजा का देखभाल करना चाहिए। परंतु ये चीजें आजकल कहाँ सुनने में आती हैं। लोग चुनाव लड़ते हैं किस लिए, स्वार्थ के लिए लड़ते हैं। मुझे पद चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। कितने लोग हैं जो वास्तव में प्रजा की सेवा करने के लिए, प्रजा के हित के लिए वो चुनाव लड़ते हैं और किसी मंत्री पद आदि को स्वीकार करते हैं। कहने के लिए तो सभी कहते हैं आपकी सेवा करने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु वास्तविक जो सत्य है वो तो कुछ और ही होता है। सानुक्रोशो, उनके मन में करुणा थी श्री राम की। जितक क्रोध है, क्रोध को जीत लिया था। ब्राह्मण प्रतिपूजक है, ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते थे। जब वनवास जाने का समय आया तो उन्होंने अपने ऐश्वर्य को बांट दिया, ब्राह्मणों में सब कुछ बांट दिया। अंत में एक ब्राह्मण आ गए, आंखें में देरी से आ गए, कुछ बचा नहीं था। तो श्री राम ने जो भी कुछ बचा था यहां वहां अंदर जाके खाली हाथ उनको नहीं भेजा, उनको भी दान दे दिया और अपनी तिजोरी बिल्कुल खाली करके निकल गए श्री राम। एक ब्राह्मण आए तो श्री राम ने उनसे थोड़ा मजाक किया। वैसे काफी दुबले पतले ब्राह्मण थे तो श्री